اسلام علیکم جی، ویلکم ٹو ہفتے کی سیدھی بات. میں بنیادی طور کے اوپر پچھلے دو ڈھائی ہفتے سے پوڈ کاسٹ نہیں کر سکتا انفارچونیٹلی، اور اس کی وجہ بڑی سمپل سی تھی جناب، میری شادی تھی. تو اپالوجیز فار ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈو دیٹ، بٹ دیکھیں میری شادی تھی تو اس چکر کے اندر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کے اندر یہ تھا کہ جی، میں نے ان دا مین ٹائم آئی واز رائٹنگ فار ڈان، میں نے ڈان کے لیے دو یا تین آرٹیکلس لکھے ہیں. ان میں میں نے اپنا سینٹ الیکشنس کے اوپر بھی اور اس سے پہلے بھی ڈسکشن وہی جو نارمل ہوتی ہے، جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکلی، وہ کافی گمبھیر ہو رہے ہیں. آئی جسٹ فنش رائٹنگ اندر آرٹیکل، دس ون از فار این امیریکن نیوز آؤٹ لیٹ. بٹ اس دفعہ میرا جو مقصد تھا اس پوڈ کاسٹ کا، وہ ذرا دو یا تین چیزوں کو ڈسکس کرنا تھا. ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں میرے پاس نالج کی ایکسپرٹیز بھی ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں میرے پاس نالج کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. اور جو چیزیں جن کے بارے میں میرے پاس نالج کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ان میں میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کچھ لوگوں کی باتیں جو کہ آپ کو سننے کی ضرورت ہے، اینڈ دیٹ ول ریئلی ہیلپ یو آؤٹ. اور وی شوڈ آل بی لسننگ ٹو دوز پیپل، کیونکہ وہ باتیں بڑی امپورٹنٹ کر رہے ہیں اور ان باتوں کا مقصد ہماری انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنا ہے. اسٹارٹنگ آؤٹ جی، میں نمبر ون جو سب سے امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا تھا، سینٹ الیکشنس کے اندر جی جو کھچ وجی ہے، لیٹس بی ویری فرینک اینڈ لیٹس بی ویری آنیسٹ اینڈ لیٹس ناٹ یوز دا کائنڈ آف نان سینسیکل ورڈس جو کہ ہمارے میڈیا کو عادت ہے استعمال کرنے کی. دیکھیں جی، سینٹ الیکشنس کے اندر بنیادی طور کے اوپر وہی ہوا ہے جو بلوچستان کی اسمبلی کے اندر جب حکومت کو اوور تھرو کیا گیا تھا، جو اس کا مقصد تھا. مقصد بڑا سمپل تھا جی، سینٹ کے الیکشن میں ہر دفعہ بولیاں لگتی ہیں، سیدھی سی بات ہے. پچھلے 30 سال سے ہو رہا ہے، میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی ایگزیکٹلی یہی لکھا تھا کہ جناب والا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ ہر دفعہ سرپرائز کیوں ہوتے ہیں. جب آپ کے گھر کے اندر ہر دفعہ ایک ہی طریقے سے سالن پکتا ہے، تو اس کے بعد 10ویں دفعہ آپ اس بات پہ کس طرح حیران ہو سکتے ہیں کہ میرے گھر میں سالن اس طرح کا پکا ہے. ابے بھائی، ہمیشہ اس طرح پکتا ہے، کوئی نئی بات کرو نا. یہ ہر دفعہ کی فیسینیشن چھوڑیں. ہاں جی، ووٹ بکتے ہیں لوگ. لٹرلی ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی ووٹ بکتا ہے، اور بڑا اچھا ووٹ بکتا ہے آپ کا، چنگے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایم پی اے نے پیسے بھی تو کمانے ہیں نا یار، اسپیشلی اگر آپ پنجاب کے اندر ایم پی اے ہیں، آپ نے پیسہ کہیں نہ کہیں سے تو کمانا ہے نا. کیونکہ شہباز شریف صاحب تو آپ کی شکل نہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، انہیں تو یہ تک نہیں پتا کہ میرا پارٹی کے اندر ایم پی اے کتنے ہیں اس وقت، اور کون کون ہے اور کہاں کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بات یہ ہے کہ ایم پی اے نے چنگے پیسے بنانے ہوتے ہیں، اسپیشلی بلوچستان جیسے علاقے سے. اگر آپ ایک ایم پی اے ہیں، جس طرح بھی لے دے کے، جس طریقے سے بھی آپ ایم پی اے بنے ہیں، آپ نے پے آؤٹ تو لینا ہے نا جناب. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ پے آؤٹ کہاں سے آتا ہے؟ سینٹ کے ووٹ سے آتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اس میں یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کمپلیکیشن اور ابسیشن. ہائے اللہ، کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. روٹی کو چوچی کہتے ہیں ہم لوگ. او ہو ہو، ووٹ بکتا ہے. او ہو ہو ہو. چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، یہ ڈرامے بازی سارے کرنی بند کریں. ووٹ ہمیشہ بکتا رہا ہے، ہمیشہ سے یہ ہوا ہے. کوئی نئی بات کریں یار، خدا کا نام ہے، چھوڑیں اس کو. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو بات ایکچولی انڈرسٹینڈ کرنے والی یہ ہے کہ کس اسٹریٹجی کے تحت اور کس طریقے سے منوور کیا گیا ہے کہ جہاں پہ جناب والا پیپلز پارٹی کی پسند کا بندہ جو ہے وہ چیئرمین بھی بن گیا ہے، پیپلز پارٹی کی پسند کا بندہ ڈپٹی چیئرمین بھی بن گیا، اور پیپلز پارٹی ہیز دی اوڈیسٹی ناؤ. یہ اور یہ مجھے اتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا، اور اس بات پہ میں جینونلی پیپلز پارٹی کی، اسپیسیفکلی زرداری صاحب کی، میں کسی حد تک عزت کرتا ہوں کہ یار دیکھیں، بندہ ہو نا بغیرت تو بندہ کھل کے بغیرت ہو. ٹھیک ہے نا، اگر بندے نے کت خانہ کرنا ہے تو بندہ پھر منہ پہ کت خانہ کرے. اس بندے کی پھر آپ رسپیکٹ بھی کر سکتے ہو کہ چلو یار، یہ بندہ ٹھوک کے منہ پہ کہتا ہے کہ بھائی میں ہوں ایسا، ایسا ہی رہوں گا، جو پٹنا ہے پٹ لو آ کے، ایسی کی تیسی آپ سب کی. اس بندے نے بیٹھ کے دو بندے اپنے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ لگائے ہیں، یعنی سو مچ سو اس بندے نے پکڑ کے ناکوں چنے چبوا دیا تحریک انصاف کو، ان لوگوں کی ناک رگڑوا کے، ان لوگوں سے ہی ووٹ ڈلوا کے سینٹ کا چیئرمین بنوایا ہے، اپنا ڈپٹی چیئرمین بنوایا ہے. اور اس کے بعد اب وہی بندہ جو ہے پکڑ کے شہری رحمان کو لیڈر آف دی اپوزیشن. اب بھائی، ہاؤ از شہری رحمان لیڈر آف دی اپوزیشن جب چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی سے ہے؟ اب بھائی، خدا کا آپ لوگوں کو نام ہے یار، الو کس کو بنا رہے ہو یار؟ تھوڑی سی اوڈیسٹی کی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. وہ جی بنیں گی یا اعظم سواتی صاحب بنیں گے، ابھی بھائی وڑ گئے دونوں. دے تحریک انصاف کین اسٹیک دا کلیم فار کہ جی چیئرمین سینٹ ہمارا بھی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ آل دو ٹیکنیکلی نہیں ہے، دے ووٹڈ فار ہم، دے سپورٹڈ ہم. اب بھائی، وین یو آر سپورٹنگ اینڈ ووٹنگ فار دا وننگ کینڈیڈیٹ، تو کس منہ سے آپ لوگ اپوزیشن پارٹی بن رہے ہو یار؟ किस मुंह से अपोजिशन पार्टी बन रही है, ये ड्रामेबाजी बंद करो ना। लोग नून लीग को बातें करते हैं और नून लीग को मैं भी उनकी तरफ आता हूं तसल्ली से, ये बाकी ड्रामेबाजी तो बंद करें ना यार, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। ठीक है, दूसरी बात आ जाएंगी नून लीग के ऊपर आ जाएं। जब नून लीग ने डिसाइड किया ना कि जी राजा जफरुल हक साहब को हम लोगों ने आगे करना है, दैट वॉज दी बिगेस्ट इंडिकेशन कि नून लीग को पता कि इनके साथ हैंड होने लगा। मैंने अपने आर्टिकल में भी ये लिखा था कि जनाबे वाला, लोगों के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले नून लीग को ये खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि जब बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत गिरने वाली थी तो नून लीग सोई क्यों हुई थी। इन लोगों का ऑब्सेशन दूसरी जगहों पे ज़्यादा था, उन लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं हो रही थी कि बलूचिस्तान में जो ड्रामेबाजी होने लगी है उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा। जब टाइम होता है तब ये सोए होते हैं, जब टाइम गुजर जाता जाग आ जाती है, फिर जोश में आ जाते हैं, फिर जोश में आके जलील हो जाते हैं और जलील होने के बाद फिर लोगों के ऊपर उंगलियाँ उठानी शुरू कर देते हैं। बात यह है जनाब कि यही हरकतें जो होती हैं ना, ये बड़ी अच्छी हरकतें होती हैं जनरल इलेक्शन के लिए। मसला सिर्फ इतना सा है कि पहली दफ़ा इन द लास्ट 5 years, एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ऑनेस्टली, पहली दफ़ा मुझे ये फीलिंग आनी शुरू हुई है बड़ी क्लियरली कि इलेक्शंस नहीं होने। मुझे आई एम गेटिंग मोर एंड मोर कन्विंस्ड बाय द डे ऑन दिस। अभी मुशरफ साहब भी मुंह उठा के माशाल्लाह वापस आ गए, मैंने पहले भी पॉडकास्ट पे बात की थी कि जनाब देर इज़ ए वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट थियोरी कि बुनियादी तौर पे मुशरफ साहब वापस आएंगे, ये जो टोटडू MQM वाले इकट्ठे हुए हैं डिफरेंट जमातों के अंदर, ये सारे इकट्ठे होकर उनके जूते के थल्ले लग जाएंगे। ये जो अपना है PSP वाले, पाक सरजमीन वाली, उन्होंने भी आके उनके थल्ले लग जाना है और फिर मुशरफ साहब बेसिकली विल बिकम द किंग ऑफ कराची एंड ही विल बी मेड द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और वो मुझे नज़र आता आ रहा है इस वक्त, क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो होने लगा है और आप तमाशा बैठ के देखें। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव इट व्हेन इट वाज टोल्ड टू मी अ व्हाइल बैक अगो, बट जिस भांडे तरीके से ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है प्लान, रोना भी आता है गुस्सा भी आता है, क्योंकि मेरे लिए तो मुशरफ साहब एक डिक्टेटर हैं और मेरे लिए वो एक अथॉरिटेरियन रूलर हैं और उस बंदे की कोई डिग्निटी नहीं है। और उस बंदे ने बैठ के इस मुल्क के साथ जो जो किया है, अल्लाह उसको इंशाल्लाह 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 अल्लाह ताला पूछेंगे, क्योंकि इस अवाम ने तो जितना पूछने की कोशिश की है उसमें तो उनको थल्ले लगा दिया गया है। अल्लाह पूछेगा उस बंदे को इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि उसके साथ वो हशर हो जो कि इस किस्म के लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोगों ने इतने लोगों के साथ ज्यादतियाँ की। बट दैट इज़ वो मेरा अपना पर्सनल है कि मैं इस किस्म के लोगों के ना कभी हक में हूँ ना मैं कभी इन लोगों के हक में हो सकता हूँ। मेरी तो सिर्फ दुआ होती है अल्लाह ताला से कि मौला प्लीज़ आप रहम करें और इस तरह के लोगों को सज़ा मौला देगा। ठीक है ना जी, अल्लाह की मर्ज़ी है और इंशाल्लाह अल्लाह देंगे इस तरह के लोगों को सज़ा। दूसरी बात पर आ जाए जनाब, इस सारी खिचड़ी के अंदर जहाँ पर मुझे डर लग रहा है ना, रियलिस्टिकली जहाँ पर डर लग रहा है, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कन्फर्म, वो तो कोई मसला ही कोई नहीं है। मसला ये, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। निहाल हाशमी से प्रेसिडेंट सेट हुआ, तलाल चौधरी उसी प्रेसिडेंट के ऊपर कन्विक्ट हुआ, उसी के ऊपर दानियाल चूतिया जो है वो अपना होगा, और उसके बाद जो है आपके पास आगे जाकर मरियम नवाज़ भी इसी एग्जैक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर ना कन्विक्ट होंगी और डिस्क्वालीफाई होंगी। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4 बुनियादी तौर पे इस वक्त इट सीम्स वेरी क्लियर कि द होल पॉइंट इज़ कि नून लीग की लीडरशिप के अंदर से नवाज शरीफ फैमिली को द शरीफ देमसेल्व्स शुड बी किक्ड आउट। और वो बातें आज से बहुत साल पहले नून लीग को अंदर या नवाज शरीफ को खुद भी रियलाइज़ करनी चाहिए थी कि पार्टियाँ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, और ये देर इज़ मोर देन इनफ पॉलिटिकल साइंस रिसर्च ऑन दिस कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तब तक नहीं आती जब तक कि फाउंडर पीछे नहीं हट जाता और प्रोफेशनलाइज नहीं कर देता पार्टी को। ये पार्टी को ऐसी बात नहीं है कि नून लीग को पता नहीं था, दे न्यू दिस वाज कमिंग फ्रॉम डे वन। ये इनके पास 5 साल पिछले भी पड़े हुए थे, उससे पहले भी 4-5 साल थे कि दे कुड हैव स्टार्टेड प्रोफेशनलाइजिंग द पार्टी, डिफरेंट किस्म के लोगों के आ जाते। देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, कोई आसमान तो नहीं नीचे गिर गया ना। बात ये होती है कि बंदे को ज़रफ बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, और उसकी अब वो अगर आप खुद नहीं करेंगे तो अगले डंडा दे के कराएंगे फिर, और अब वही हो रहा है कि डंडा दे के करा रहे हैं। मीनवाइल दूसरी बात जो शहबाज शरीफ साहब के पास जो आ जाती है, बात सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ऑनेस्टली थिंक्स कि अभी भी टाइम पड़ा हुआ है और बचत हो जाएगी और एक एग्रीमेंट हो जाएगा। आई एम कन्विंस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मियां साहब ने बहुत लंबा काम खींच दिया है, वो नहीं अब होने लगा। सेकेंडली शहबाज शरीफ के ऊपर जिस किस्म के, शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना बड़ा आसान है एक्चुअली, लाइक दिस इज़ व्हाट पीपल डोंट रियलाइज। उसकी रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ हैज़ बिन इन द पब्लिक आई डूइंग गेटिंग इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग ऑफ थिंग्स वे मोर देन ही शुड हैव। ठीक है, उसका मसला ये होता है कि आपका फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है. जब आपका फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर मिस्टेक्स निकालना बहुत आसान होता है. फॉर इंस्टेंस तीन केसेस हैं, मैं आपको बताता हूँ, और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर वो सारे के सारे खुलेंगे केसेस. तीन केसेस हैं जहाँ के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पकड़ के थल्ले लगाया जा सकता है. एक आशियाना स्कीम वाला केस है जो आजकल खुला हुआ है, मेट्रो बस मुल्तान वाला केस जिसके ऊपर डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो बड़े आराम से टाई बैक किया जा सकता है. और जो तीसरा केस है वो सस्ती रोटी स्कीम का केस है. वो जो तीसरा केस है ना सस्ती रोटी स्कीम वाला, उसके अंदर एग्जीक्यूशन और कन्विक्शन लेके आना सबसे आसान है, क्योंकि उस केस का मैग्नीट्यूड जो है ना वो इस लेवल का है और उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है. तो उसके अंदर एक उसको ड्रिल डाउन करना इज़ नॉट दैट हार्ड. सेकेंडली जनाब वाला, अभी आप हुकूमत में, जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट अनाउंस होगी, इंशाल्लाह केयर टेकर गवर्नमेंट जैसे ही अनाउंस होगी उसके फौरन बाद ये होना है कि सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स चेंज कर दिए जाएंगे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ब्यूरोक्रेट्स आप लोगों से डर की वजह से खामोश बैठे हुए हैं ना, वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देंगे. और जब वो बोलना शुरू कर देंगे ना, तो उन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाने, उन्होंने सारे इल्ज़ाम ठोकने हैं शहबाज शरीफ साहब पे. तो पॉइंट बीइंग के शहबाज शरीफ साहब जो समझ रहे हैं ना कि मैं यहाँ से बड़े आराम से पासे होने लगा हूँ, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है. एंड ही इज़ डिलूजनल इफ़ ही थिंक्स कि वो बच के निकल जाएंगे. जिसका मतलब ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग नून लीग के अंदर से शरीफ को पकड़ के साइडलाइन करने की एक बहुत प्रैक्टिकल और डूएबल स्ट्रैटेजी इस वक्त तकरीबन इम्प्लीमेंटेशन उसकी ख़त्म हो रही है. जिससे दूसरा सवाल उठता है कि इसके बाद क्या करना है. इसके बाद मसला यह है कि जी देखें, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के नहीं बन सकते बिकॉज ही इज़ अनस्टेबल. मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोग माइंड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ को इस मुल्क में कुछ नहीं मिल सकता. दैट इज़ ए बिगर पॉसिबिलिटी. उसमें यह है कि जहांगीर खान साहब को तो पकड़ के साइड पे पासे लगा लिया गया कोर्ट्स के थ्रू. उसमें अब दो बंदे बचते हैं पीछे, एक शाह महमूद कुरैशी हैं और दूसरे हैं चौधरी सरवर. चौधरी सरवर ने बड़े अपने तरीके से लो की अपने आप को रखा हुआ है, उन्होंने साथ में अलीम खान को भी लगाया हुआ है किसी हद तक, और अलीम खान अपनी भी गेम के अंदर है, बट साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी साइड पे लगे हुए हैं. रियलिस्टिकली स्पीकिंग, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तो शहबाज शरीफ साहब कन्विक्ट हो जाते हैं ना, विच इज़ हाईली लाइकली, अगर तो वो कन्विक्ट हो जाते हैं, देर इज़ गोइंग टू बी ए मैस प्रॉब्लम विद इन PMLN रैंक एंड फाइल जो कि MPA लेवल के ऊपर है. द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ कि जी उनकी री इलेक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस. ठीक है, देर माई उस पॉइंट के ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर देर आर चांसेज ऑफ टू थिंग्स हैपनिंग. आइदर ए डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट्स कि जी हमें और टाइम चाहिए, वही बांग्लादेश बुनियादी तौर पर बांग्लादेश मॉडल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं 2012 से, माशाल्लाह वो अब जाके कम्प्लीशन के नियर आ रहा है. उसमें कोर्ट्स कैन गिव एन एक्सटेंशन टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, जो कि मुझे पर्सनली लगता है, माई पर्सनल बिलीफ एट दिस स्टेज इज़ कि आई थिंक द केयर टेकर गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, इट्स गोइंग टू बी अ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट. इंस्टेड ऑफ 3 months इट विल बी गिवन अ कपल ऑफ ईयर्स, एंड वो कपल ऑफ ईयर्स के अंदर ये होगा कि दे विल ट्राई टू फिल इन विद द टेक्नोक्रेट्स विद द यूजुअल सस्पेक्ट्स, मोस्ट ऑफ देम विल बी द यूजुअल सस्पेक्ट्स. IMF के साथ बैठ के एक इंतहाई डिफ़िकल्ट डील्स कट करनी है. मैं पहले बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट किस्म की चीज़ें जो कि हम लोगों ने IMF के साथ डील करनी है. इकोनॉमिकली स्पीकिंग वो डील्स कट होंगी, हमारे पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, डॉलर डिवैल्यू होगा, ऑल ऑफ दैट स्टफ इज़ गोइंग टू हैपन. और मुझे नज़र आ रहा है कि वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलावा और कोई तरीका नहीं है करने का. माय कंसर्न इन द टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक देयर आर इनफ पीपल इन पाकिस्तान टू basically staff the technocratic government, and I don't think there are enough Pakistanis willing to come back from abroad to staff the government. Uske andar bhi ye hai ki jo wapas bhi aane ko taiyar hain, they lack the understanding of the system, aur system ke andar un logon ki understanding because wo nahi hai takriban, they don't understand how the system works. By system I means the bureaucracy, kyunki bureaucracy jo naya banda hota hai na usko kutta karke rakh dete hain. मैं बड़ा आपको खुल के बता रहा हूँ, मैंने मेरी पूरी की पूरी डिसर्टेशन इस पे है, मेरी पूरी स्टडी इस पे है. हर मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी अगर चाहे ना तो पॉलिटिशियंस को कुत्ता करके रख देती है और अपनी मर्जी से कुत्ता करती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. और मुझे नज़र आ रहा है कि कोई भी टेक्नोक्रेट अगर पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, अनटिल एंड अनलेस उनकी पाकिस्तान में ठीक ठाक रूट्स हैं एंड दे अंडरस्टैंड द सिस्टम, वो सर्वाइव नहीं करेगा. एज अ रिजल्ट विल बी लेफ्ट विद मोस्टली अ ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टाफ्ड विद अ कपल ऑफ यूजुअल सस्पेक्ट्स सिटिंग इन इस्लामाबाद जो कि अपना इनको थुक लगाते हैं, ग्लोबल डोनर्स को थुक लगाते हैं, विच इज़ अ बैड गवर्नमेंट इन माई परस्पेक्टिव. मेरा कंसर्न ये है टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ. डिसीजन टफ हैं, वो होने हैं, वो ये नहीं करेंगे कोई और कर देगा. वो होने का बेस्ट तरीका इस वक्त यही है कि जो नज़र आ रहा है इस वक्त क्लियरली, वो ये है कि इन लोगों ने फैसला कर लिया कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू करने हैं. द पॉइंट उसके अंदर यह आ जाता है कि जी चलें अगर हम लोग टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट भी चला के देख लेते हैं, देन वॉट द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू माइंड इज कि जी फिर उसके अंदर अगर जो स्प्लिटिंग करनी है, जो रीडिज़ाइन करने का ये प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं, देन द नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन इज आई लिजिटिमेटली फील देर इज़ ए वेरी गुड चांस फॉर शाह महमूद कुरैशी टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब. आई सेड दिस बिफोर और मैं हवा में बोंगियाँ नहीं मार रहा, और मेरा PDI के ऊपर स्टांस बड़े लोगों को बड़ा क्लियर है, नून लीग के ऊपर भी स्टांस मेरा बड़े लोगों को बड़ा क्लियर है, शिवाज शरीफ के साहब के बारे में जिस किस्म की मेरी ओपिनियन है वो भी लोगों को बड़ा क्लियरली पता है. तो उसके अंदर इट्स नॉट, देयर इज नो लव लॉस्ट फॉर मी विद आइदर ऑफ देम, बट उसके अंदर यह है कि आई हैव मोर एंड मोर बिन इंक्लाइन टू बिलीव दैट शाह महमूद कुरैशी माइट एक्चुअली हैव अ शॉट एट बिकमिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब मोर देन इमरान खान विल एवर हैव अ शॉट एट बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. होने को तो कुछ भी हो सकता है, एंड बट दीज आर ऑड्स बेस्ड ऑन एजुकेटेड गैसेज एंड इंफॉर्मेशन बाई टॉकिंग टू अदर पीपल, दीज थिंग्स फील रियल. चौधरी सरवर साहब इज ए प्लेयर जो कि ऑनेस्टली लोगों को समझ भी नहीं आती, मुझे भी नहीं समझ आती. आई डोंट रियली गेट हाउ ही मैनेजेस टू सर्वाइव सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, बट ही डज अपेरेंटली एंड इज़ वेरी सक्सेसफुल एट डूइंग सो एंड ही सर्वाइव. जहाँ पर जहांगीर खान तरीन फंस जाता है वहाँ पर चौधरी सरवर निकल जाता है. तो पॉइंट इज ऑनेस्टली इट्स काइंड ऑफ डिप्रेसिंग. लाइक आई फील दैट we are at a point ke jahan pe we are going to get a technocratic government aur hame thuk ye lagaya jayega ki all we'll have elections and the caretaker government aa jayegi, fir caretaker government aake bada realistically baith ke cheezein lay out karke batayegi ki bhai jaan waat lagi hui hai, there's no other way, we're going to get screwed and we need more time. एंड वो मिफ्ता ने पहली बात कर दी है अब रिसेंटली कि जी देखें हम लोग बजट जो है वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लिख रहे हैं इस वक्त, और जो फाइव ईयर प्लान भी लिखा जा रहा है टू बी वेरी फ्रैंक विद यू वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लिखा जा रहा है. उसमें जिस किस्म की बातें लिखी जा रही हैं फॉर ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे आर टू एम्बिशियस, वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लिखा जा रहा है. एंड दैट इज़ वेयर आई एम कन्विंस्ड, आई हैव बीन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, आई एम गेटिंग मोर कन्विंस्ड ऑफ दिस नाउ. तो उसके अंदर ये सिचुएशन है, इट्स अगली पीपल्स पार्टी तो घर वाले भी अपने बेच के आ जाएगा एज लॉन्ग एज उनको सिंध के अंदर करप्शन करने का चांस देते रहे और उनके जो खाते लगे हुए वो खुलते रहें. विद रिगार्ड्स टू दैट वो इट जस्ट लुक्स डिप्रेसिंग यार. मैं आई डोंट हैव वर्ड्स, इट्स जस्ट डिप्रेसिंग टू वॉच. उसमें यह है कि सेंटर के अंदर आई विश कि हम लोग इलेक्शन की बात करनी शुरू करें, बट आई ऑनेस्टली डाउट दैट नाउ अनटिल एंड अनलेस समथिंग चेंजेस इन अ मेजर फैशन. मेरा जहाँ तक ख्याल है कि दे आर ट्राइंग टू रीशेप PMLN, उसके अंदर शिवाज शरीफ और चौधरी निसार को मिला के दे आर ट्राइंग टू कम अप विद एन अल्टरनेटिव. आई डोंट थिंक उसका गुजारा हो सकता है एट दिस स्टेज. शाह महमूद कुरैशी हैज़ अ बेटर शॉट एट बिकमिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब एट दिस स्टेज प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उसने अपने आप को चुप करके रखा हुआ है, पासे लगा हुआ है एंड ही इज वेटिंग फॉर एवरीबडी एल्स टू फॉल. इन लोगों ने तो भंगड़े डाले थे यार, दे लिटरली सेंट कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस जब वो लोग अपने लोधरा वाला इलेक्शन हारे हैं ये लोग तीन लोग. तो या वो अपनी जगह पे चीज़ें हैं. उसके अंदर ये भी है कि नून लीग इज़ फाइटिंग अ बैटल फॉर इट्स सोल एट दिस स्टेज. इज़ इट ए पार्टी ऑफ शहबाज और इज़ इट ए पार्टी ऑफ नवाज, एंड दैट इज़ अ बैटल दैट्स रेजिंग ऑन राइट नाउ. दे दिला के किसी तरीके से शहबाज शरीफ को सदर तो बना लिया है, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि मियाँ साहब इज़ डीपली एंग्री. आपने सब ने उनकी शक्लें भी देखी होंगी, आपने देखा भी होगा हाउ डिस्टर्ब ही इज़ एंड हाउ एंग्री ही इज़ एट बींग फोर्स टू डू दिस. वो ऐसे हवा में नहीं है, ही इज़ एंग्री एट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, बट दिस इज़ नॉट दी ओनली इशू दैट पाकिस्तान फेस इज़ राइट नाउ. उसमें यह था कि मेरी आप लोगों को प्लीज़ एक सजेशन है कि देखें, ज़रा हटके ने एक इंटरव्यू किया था जो हमारे पठान भाई हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे फाटा से ट्राइबल एरिया से जो भाई हैं, जो कि इस्लामाबाद के अंदर मुजाहरा भी कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं, और उन लोगों की जो मुहिम चला रहे हैं कि भाई खुदा का नाम है हमें मारना बंद करो, वो ज़रा हटके के अंदर वसतुल्ला और ज़रार और जैदी साहब ने बड़ा बहुत अच्छा प्रोग्राम किया प्रॉपर, देयर वाज अ वेरी गुड इंटरव्यू. प्लीज़ वो इंटरव्यू जब आपको चांस मिले प्लीज़ सुनिएगा. ऑनेस्टली मुझे इतनी डिटेल्स इन मामलात में नहीं पता थी. मुझे तो गुस्सा भी आया और मुझे अपने आप पे भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यार हम लोग किस किस्म के पढ़े लिखे लोग हैं कि हम लोगों को अपने मुल्क के अंदर हमारे भाई हैं यार, ये हमारे भाई हैं और हमें यही नहीं पता कि हमारे भाइयों के साथ किस किस्म के हालात हो रहे हैं. हम इस मुल्क के लिए हम सबकी जानें हाजिर हैं और सबसे ज़्यादा जानें हमारे भाइयों की जाती हैं और उनको फिर पकड़ के पुलिस भी जलील करती है और उनके ऊपर अजीब व गरीब किस्म का प्रेशर है जो कि हम में से किसी और को, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि नहीं बर्दाश्त करना पड़ता, बट ये ज़्यादती वाली बात है कि हमारे भाइयों को ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है. तो प्लीज़ उसके ऊपर पढ़ें, डिस्कस करें, वो प्रोग्राम देखें. द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि हम लोग अपने भाइयों की बात तो पूरी सुन लें ना कि वो क्या क्या रहे हैं, उनकी डिमांड क्या, उनकी बड़ी सिंपल सिंपलिस्टिक किस्म की डिमांड्स हैं. उसमें यह है कि मेरी दुआ है कि हम लोगों को चांस मिले और मीडिया कवरेज उन लोगों की ज़्यादा करे. आई फील अशेम्ड कि हम में से किसी में इतनी डिसेंसी नहीं थी कि हम लोगों को ये बातें पहले पता चलती हों, हम लोगों ने किसी ने डिगिन नहीं किया. बट चलो शुक्र है खुदा का कि देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए ना, अब थोड़ा थोड़ी सी रियलाइजेशन हो रही है हमें इन चीज़ों के बारे में. एंड आई होप टू गॉड कि हम लोगों को अल्लाह तौफीक दे कि हम लोग अपने भाइयों की मदद कर सकें और सबको बचा के रख सकें. बट एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, दिल ख़राब होने वाली सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं. एंड आई डोंट नो ऑनेस्टली हाउ टू गो अबाउट इट. डिप्रेशन भी होता है, ये इलेक्शन की जो गेमें हैं, वो जीत गए, ये हार गए, वो हार गए, ये सारी बड़ी सिंपलिस्टिक बातें हैं. हमारा मसला ये है कि हम लोग अगले एक दो साल के लिए हमारी बहुत लंबी वाट लगने लगी है. टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर आ गई, विच लुक्स वेरी लाइकली नाउ, इकोनॉमिकली मुल्क की वाट लग जाएगी इमीडिएटली फॉर द 6 to 12 month पीरियड. फिर उसके बाद शायद सिचुएशन बेहतर होनी शुरू हो जाए. एंड देन अगेन वो जो सिचुएशन बेहतर होगी, इट वॉन्ट बी फॉर एवरी वन, इट वुड बी फॉर अ वेरी लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल. तो ये है जनाब. इसके अंदर ये है कि मैं आप लोगों को एज ऑलवेज आई होप यू रीड व्हाट आई राइट. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ इफ देयर समथिंग दैट आई शुड बी राइटिंग ऑन, मुझे आप बताइए. अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है जो मैं जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ तो मुझे वो भी बताइएगा प्लीज़. और उसके अलावा कोई भी अगर आपके जहन में कमेंट हो या कोई सजेशन हो, प्लीज़ लेट मी नो. एंड मैं सुनने को तैयार हूँ, मैं बड़ा खुशी से वो सुनने को तैयार होता हूँ. तो जनाबे वाला ये बात है. थैंक यू सो मच एज़ ऑलवेज फॉर लिसनिंग एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर फीडबैक. एंड प्लीज़ 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 गेट बैक टू मी एज मैनी टाइम्स एज यू कैन. यू कैन फाइंड द पॉडकास्ट ऑन पॉडोमैटिक एंड आईट्यून्स. आर्टिकल्स मोस्टली डॉन के ऊपर होंगे. इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई विल पोस्ट इट ऑन ट्विटर. थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.